بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرہ زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7445 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج گروار ہے، آبان ماہ کی 22، ربیع الاول کی 26 اور نومبر کی 12 تاریخ۔ ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اپرانت راجنیتی چرچا کا دینی کارکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتی چرچا کے اپرانت آپ سنیں گے کارکرم آج کی بات، اور سبھا کا انتم کارکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس۔ تو دوستوں، یہ تو تھے ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی روحانی کا کہنا ہے کہ ادھک سے ادھک دباؤ کا دور انتم سانسیں لے رہا ہے۔ ایران میں کورونا وائرس کی وجہ سے 457 لوگوں کی موت۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دشمن کی ہر مورکھتا کا کڑا جواب دیا جائے گا۔ شیو سینا کا کہنا ہے کہ تیجسوی یادو ایک جھجھارو نیتا بن کر ابھرے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے اختر عباس سے سماچار سنیے۔ اسلامی گڑتندر ایران کے راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ادھک سے ادھک دباؤ کا دور انتم سانسیں لے رہا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے گروار کو ویڈیو کانفرنسنگ دوارا شکشا اور اپچار کی کئی یوجناؤں کے ادگھاٹن کے اوسر پر کہا کہ ایرانی راشٹر اپنے پرتیرود اور ڈٹے رہنے کے پرنام شیگر ہی دیکھے گا۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ آج ساری دنیا میں موجود لکشن امریکہ سے لے کر دوسرے دیشوں تک اس بات کے سوچک ہیں کہ ادھک سے ادھک دباؤ کی نیتی انوپیوگی رہی ہے، اور یہ نیتی اپنی انتم سانسیں لے رہی ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے آشا ویکت کی ہے کہ جنتا اور دیش کی سمست سنستھاؤں کی مدد سے ایران دشمنوں کے اتیاچار پورن اور غیر قانونی پرتبندھوں کے کٹھن دور سے گزر جائے گا۔ ودیش منتری محمد جواد ظریف نے پاکستان میں اس دیش کے ادھکاریوں کے ساتھ اپنی وارتاؤں کو سفل بتایا ہے۔ محمد جواد ظریف نے بدھوار کی رات ٹویٹ کر کے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں سرکشا، سیماورتی ویاپار اور اسی طرح وستو ونیمے کے بارے میں وسترت اور اتینت سفل وارتائیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی، سینا پرمکھ جنرل قمر جاوید باجوہ، پردھان منتری عمران خان کے ساتھ شیتر افغانستان اور اسلام فوبیا سہت انتراشٹری وشیوں پر ان کی بات چیت و وچار ومرش ہوا۔ انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کے مہا ندیشک نے ایران کے پرمانو گتیویدھیوں کا نرکشن جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے آشا جتائی ہے کہ ایران و آئی اے ای کی سہمتی سے دونوں کا آپسی سہیوگ و وشواس مضبوط ہوگا۔ رافائل گروسی نے بدھوار کو سنیکٹ راشٹر سنگھ کی مہاسبھا کی بیٹھک میں انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کی وارشک رپورٹ پیش کرنے کے اوسر پر اپنے بھاشن میں ایران کے وشے کے بارے میں کہا کہ ایران کے میں پرمانو پدارتھ اور اگھوشت گتیویدھیاں نہ ہونے کی سمیکشا جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے اس بات کی پشٹی کرتی ہے کہ سیف گارڈ سمجھوتے کے انترگت ایران کی اور سے گھوشت پرمانو پدارتھوں میں کسی بھی پرکار کی گڑبڑ نہیں ہے۔ آئی اے ای اے کے مہا ندیشک نے اگست میں اپنی تہران یاترا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس یاترا میں سیف گارڈ کے کچھ معاملوں کو لاگو کیے جانے اور ایران میں دو ستھانوں پر آئی اے ای اے کے نرکشکوں کو جانے کی انومتی دینے پر سہمتی ہوئی۔ ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने कोरोना संक्रमण के 11,000 से अधिक नए मामलों और गत 24 घंटों में 457 बीमारों की मौत की सूचना दी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने गुरुवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि गत 24 घंटों के दौरान 11,517 नए बीमारों की पहचान की गई, जिनमें 3,149 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए, जबकि बाकी को आरंभिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में कोविड 19 के कुल संक्रमितों की संख्या 7,26,585 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 457 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद इस बीमारी से ईरान में मरने वालों की कुल संख्या 40,021 तक पहुंच गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी के अनुसार अब तक 5,41,566 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। लेबनान के हिजबुल्ला संगठन के महासचिव ने कहा है कि जो कुछ अमेरिका के चुनाव में हुआ वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए अत्यंत शर्मनाक है। सैयद हसन नसरुल्ला ने बुधवार की रात शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भाषण करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम से क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा और अमरीका की एकमात्र व स्थायी प्राथमिकता इसराइल की सुरक्षा और उसकी सैन्य श्रेष्ठता को बाकी रखना है। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि ट्रंप सरकार सबसे अधिक घमंडी, सबसे बड़ी अपराधी व क्रूरतम सरकार है, कहा कि सरकार ने हत्या, भ्रष्टाचार, अपराधों, साम्राज्यवाद के बारे में अमेरिका का वास्तविक चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेबनान के हिजबुल्ला संगठन के महासचिव ने इस बात पर जोर देते हुए कि विभिन्न विषयों, विशेषकर फिलिस्तीन की समस्या के बारे में ट्रंप की नीति पराजित हो चुकी है, कहा कि ट्रंप की हार से ट्रंप नेतन्याहू और बिन सलमान पर आधारित डील ऑफ सेंचुरी के त्रिकोण का एक कोण धराशायी हो गया। सैयद हसन नसरुल्ला ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि ट्रंप जैसे इंसान से उनके बाकी बचे सत्ताकाल में किसी भी प्रकार के काम की संभावना रखी जा सकती है, कहा कि प्रतिरोध के मोर्चे को अमरीका या इसराइल की तरफ से किसी भी मूर्खता का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से सऊदी अरब के हमलावर गठजोड़ के अपराधों पर ध्यान न दिए जाने को अत्याचार बताया है। मोहम्मद अली अल हुसी ने यमन के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स के यमन के राजनीतिक संकट के समाधान के बारे में हालिया बयान की निंदा करते हुए कहा कि ग्रिफिथ्स ने झूठ नहीं कहा लेकिन सच को बयान भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सना सरकार ने जो समाधान पेश किया उस पर सऊदी गठबंधन के सदस्य देशों ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि यमनी जनता न्यायपूर्ण समाधान और सम्मानजनक शांति की इच्छुक है। याद रहे कि यमन के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने रविवार को इस बात का खंडन किया था कि राष्ट्रसंघ ने यमन के संघर्षरत पक्षों को शांति योजना का मसौदा दिया है। इराकी सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकी गुट दाइश के बाकी बचे तत्वों और उनके गुप्त ठिकानों पर कड़े प्रहार किए हैं। इराकी सुरक्षा बलों के सूचना केंद्र ने एक बयान जारी करके बताया कि फेडरल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने वायुसेना की मदद से लगातार 8वें दिन उत्तरी इराक के खानुका पर्वतीय इलाके में आतंकी गुट दाइश के बाकी बचे सदस्यों का पीछा जारी रखा। बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में दाइश की 4 गाड़ियां, 56 गुप्त ठिकाने, 45 भूमिगत सुरंगें और 110 बम तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई में इराकी सुरक्षा बलों ने दाइश के तत्वों के कब्जे से 10वें रॉकेट लॉन्चर, मॉर्टर लॉन्चर और बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए। शिवसेना का कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ये हारे हुए पहलवान को पदक देने जैसा होगा। शिवसेना ने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही मिलना चाहिए। इसका आनंदोत्सव मनाया गया लेकिन आंकड़ों के खेल में NDA के हाथ फिसलती जीत लगी और असली विजेता 32 वर्षीय तेजस्वी यादव ही हैं। शिवसेना ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के इशारे पर काम करना पड़ेगा, बिहार का नेतृत्व आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जा चुका है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि स्पष्ट शब्दों में कहें तो बिहार में बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल दो विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों को सफलता मिली, इसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में जनता द्वारा झिड़क दिए जाने पर मुख्यमंत्री पद पर उन्हें लादना एक प्रकार से जनमत का अपमान है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा कि तेजस्वी के रूप में सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि देश को एक जुझारू नेता मिला है। वो अकेले लड़ता रहा, वो विजय के शिखर तक पहुंचा, वो भले जीता ना हो लेकिन उसने हार भी नहीं मानी। देश के राजनीतिक इतिहास में संघर्ष को लिखा जाएगा। भारत में 106 दिन के बाद कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5 लाख से कम हो गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,905 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 52,718 मरीज कोरोना से मुक्त हुए। भारत में अब केवल कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर 52.79% हो गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल मामलों की संख्या 46,43,917 हो गई है। भारत और फिलीपींस के बीच ब्राह्मोस मिसाइल खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। भारत सरकार के निकटवर्ती सूत्रों ने बताया कि अगले साल भारत और फिलीपींस ब्राह्मोस मिसाइलें खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों का कहना है कि अगले साल होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते शामिल होंगे। ब्राह्मोस मिसाइलों को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से बनाया है। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राज्य अलास्का में सीनेट के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार की जीत के बाद सीनेट में इस दल की सीटों की संख्या 50 हो गई है। अलास्का से रिपब्लिकन प्रत्याशी डेन साल्विन ने आजाद उम्मीदवार एलग्रास को हरा दिया, जिनका समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही थी। इस तरह 100 सदस्यीय सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की सीटों की संख्या 50 हो गई है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के पास 48 सीटें ही बाकी हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान न केवल हमारा पड़ोसी देश है बल्कि घनिष्ठ मित्र भी है। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक और बहुत अच्छे हैं।
ईरान पाकिस्तान का न सिर्फ पड़ोसी है।
ज़ायनी शासन के मिसाइल हमलों में घायल फिलिस्तीनी कलाकार ने सिद्ध कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीनियों के रगों में खून है तब तक उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, और उनके खिलाफ इसराइली प्रयासों से उनके इरादे न केवल कमजोर नहीं पड़ जाते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए जहां प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं आज अरावड़ी देवी के मकान पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान न केवल हमारा पड़ोसी देश है बल्कि घनिष्ठ मित्र भी है। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक और बहुत अच्छे हैं। ईरान के विदेश मंत्री की 2 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा समाप्त हो चुकी है। अगले सप्ताह दोनों देशों की संयुक्त सीमा पर एक नया मार्ग खुला जाएगा। पूरी जानकारी के साथ साथी कमर अब्बास।
ईरान और पाकिस्तान के संबंधों के विस्तार पर बल। ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस देश के उच्च अधिकारियों से भेंट वार्ताएं की। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जो भेंट वार्ता की उसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग में विस्तार पर बल दिया गया। इसी प्रकार विदेश मंत्री ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से भी भेंट वार्ता की, जिसके दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ईरान पाकिस्तान का न सिर्फ पड़ोसी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान न केवल पाकिस्तान का पड़ोसी है बल्कि हमारा एक अच्छा और घनिष्ठ मित्र है और ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमने आज द्विपक्षीय सहकारिता को मजबूत करने और इसी प्रकार क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को विस्तृत बनाए जाने के बारे में चर्चा की। दोनों देशों की सीमा पर नया रास्ता खोले जाने को ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी इस यात्रा की एक उपलब्धि बताया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आज हमने द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पर सहयोग और अगले सप्ताह ईरान और पाकिस्तान की संयुक्त सीमा पर एक नया रास्ता खोले जाने के बारे में बहुत अच्छी बातचीत की है। इसी प्रकार द्विपक्षीय व्यापार के बारे में हमने वार्ता की। इसी प्रकार हमने अफगानिस्तान क्षेत्र, फारस की खाड़ी और कुछ देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाए जाने और इसी प्रकार अजरबैजान, आर्मेनिया और करबाख संकट और इसी प्रकार परमाणु समझौते के बारे में वार्ता की। ईरान के विदेश मंत्री ने इसी प्रकार सीमा पर दोनों देशों की सुरक्षा के संबंध में पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी भेंटवार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना और क्षेत्रीय सहयोग, विशेषकर अफगानिस्तान की शांति योजना को मजबूत बनाए जाने के संबंध में वार्ता विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थी। इसके अलावा दोनों देशों के अधिकारियों ने इस्लामोफोबिया तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा संपन्न हो गई। पैमान रहमानी, IRIB, इस्लामाबाद।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
जानी शासन के मिसाइल हमलों में घायल फिलिस्तीनी कलाकार ने सिद्ध कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीनियों के रगों में खून है तब तक उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ इसराइली प्रयासों से उनके इरादे न केवल कमजोर नहीं पड़ते बल्कि वे और मजबूत हो जाते हैं। जानकार हलकों का मानना है कि अगर इसराइली हमलों से फिलिस्तीनियों के इरादे कमजोर पड़ते तो बहुत पहले ही फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध खत्म हो चुके होते, परंतु हम देख रहे हैं कि यह प्रतिरोध न केवल खत्म नहीं हुए हैं बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें मजबूती आती जा रही है। इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
रंग में रंग और चित्र में चित्र, जो कलाकृतियां गजा पट्टी की दीवारों पर हैं, इन्हें एक फिलिस्तीनी कलाकार ने बनाया है जो फिलिस्तीन की गाथा सुनाती है। जिस फिलिस्तीनी ने ये चित्रकारी की है वो सन 2008 में इसराइल के मिसाइली हमले का निशाना बन गया था। इस हमले में उसके साथ साथी शहीद हो गए थे और उसका पैर कट गया था। ये फिलिस्तीनी संघर्षकर्ता कहता है कि हम ज़ायोनी शासन के हमलों का निशाना बन रहे थे। जो कुछ फिलिस्तीन में हुआ है और परिवेष्टन से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है उसका मैंने चित्रण करने का प्रयास किया है। मैं फिलिस्तीन की सुंदरता का चित्रण करना चाहता हूँ। जिहाद कहता है कि फिलिस्तीन का चित्रण करना अब उसके जीवन का उद्देश्य हो गया है। जब वो चित्रकारी करने में लीन हो जाता है तो फिर वो ये भूल जाता है कि उसका एक पैर भी कट चुका है। कला का संदेश प्रेम और वफादारी है। चित्रकारी से मेरा उद्देश्य फिलिस्तीन और इस्लाम की पवित्र मान्यताओं की चित्रकारी करना है। जिनके पास मानवता है उनसे मेरा आह्वान है कि युद्ध में घायल होने वालों की ओर वे लोग विशेष रूप से ध्यान दें। इस फिलिस्तीनी कलाकार ने सिद्ध कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीनियों की रगों में खून है तब तक उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ इसराइली प्रयासों से उनके इरादे और अधिक मजबूत होते जाते हैं। गजा से IRIB के लिए इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट।
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए जहां प्रयास जारी हैं, वहीं आज राबड़ी देवी के मकान पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नतीजे और फैसले में अंतर है और जनता ने हमारे हक में फैसला दिया है, जबकि चुनाव आयोग ने नतीजे उनके हक में दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर अपनी सरकार बनाने के प्रयास में जुटा है और सूत्रों के अनुसार 16 नवंबर को नीतीश कुमार की नई सरकार शपथ ले सकती है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया। महागठबंधन की बैठक में राजग नेता तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित किया। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में गया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है वह बदलाव का है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, जिसे 75 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिली हैं। राजग को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने से कोई नहीं रोक पाया और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए। महागठबंधन की इस बैठक में धन्यवाद यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि जनवरी तक 19 लाख रोजगार और अन्य समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो महागठबंधन आंदोलन करेगा। चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम रोने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन को अधिक वोट मिले हैं, लेकिन सीटें एनडीए को अधिक मिली हैं, क्योंकि कई सीटों पर पोस्टल वोटों को रद्द कर दिया गया। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी, इसीलिए सभी विधायकों को पूरे महीने पटना में रहने को कहा गया है।
जनता का जो जनादेश और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर, फैसला हमारे पक्ष को और नतीजा उनके पक्ष। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार ने।
इसी बीच CPI-ML नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया, कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और 70 सीटों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को सीटें कम मिलती और वो सीटें राजद लेफ्ट में आती तो चुनावी परिणाम बेहतर होता। उन्होंने कहा कि हम एनडीए को सत्ता से बाहर नहीं कर सके, अतः हमारा मिशन सफल नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई।
अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती।
कांग्रेस को 70 में केवल 19 सीटें ही मिल पाई हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा टिकाऊ आर्थिक विकास, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय पत्रकार। हालिया दिनों में भारत के कई कारणों से मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलबत्ता इससे पहले कई महीनों से अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र के सीएम और मुंबई पुलिस कमिश्नर को ललकार रहे थे।
अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम, इतनी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं। आज उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है, इस देश का एक एक कोना।
मगर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें धर्म व न्याय की लड़ाई का योद्धा बनाया।
कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर है। सबसे ये अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है।
शिवसेना के संजय राउत ने इस गिरफ्तारी को कानून का राज बताया और चुभता सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की है।
महाराष्ट्र में कानून का राज है, इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है, उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। तो ऐसा केंद्र ने 6-7 साल में या उससे पहले की जो सरकारें थी, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की।
अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेताओं ने प्रतिक्रिया प्रकट की और सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए।
बात आई आज अर्नब गोस्वामी की, अर्नब गोस्वामी टीवी डिबेट पर चिल्ला के बोलता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। क्या ड्रग्स वाले लोगों का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट करे।
भाजपा एमएलए राम कदम ने इसे लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई बताया।
देखिए, अर्नब जी के जान को खतरा है, हम महाराष्ट्र सरकार को स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं कि वे कान खोल करके सुन ले, अर्नब जी के सर के बाल को भी धक्का लगा तो ये सारा देश बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लड़ाई अर्नब गोस्वामी जी की नहीं है, केवल वे लड़ रहे या रिपब्लिक टीवी लड़ रहा, इस तरह से नहीं है, ये सारे देश की लड़ाई है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ने संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के विचार सुने।
और आज भी आपने देखा होगा, देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया।
देश की स्वतंत्रता तो को किसी भी पार्टी या सरकार ने बातचीत नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
भाजपा के सभी लोगों ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया, मगर संजय राउत ने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके इस सवाल से कश्मीर के फोटो पत्रकार मसर्रत जहरा की याद आ गई, उनका एक बयान सुने।
मेरा नाम मसर्रत जहरा है और मैं कश्मीर बेस्ड फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं कश्मीर में 4 साल से काम करती आ रही हूँ एज अ फोटो जर्नलिस्ट। सो कश्मीर में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, सो दैट जो कश्मीर में जो कश्मीर का जो रियल फेस है, कश्मीर की जो ट्रू स्टोरीज है, वो बाहर ना आए, वो दुनिया के सामने ना आए। 18 अप्रैल को मुझे कॉल आया था साइबर पुलिस स्टेशन से, तो उन्होंने मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए वहां पे बुलाया था। तो दिन के 11 बजे मैं प्रेस रिलीज देखती हूँ, प्रेस रिलीज में लिखा है कि फेसबुक यूजर मसर्रत जहरा हैज बीन बुक्ड अंडर UAPA। तो उन्होंने जो मेरी आइडेंटिटी है वो छुपाई है, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफी हूँ। उन्होंने मुझे एज अ फेसबुक यूजर आइडेंटिफाई किया है। तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, तो मैंने उनका जवाब दिया कि मैंने बोला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं एक सहाफी हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई सोशल एजेंडा नहीं हूँ, मैं बस एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ जो अपना काम कर रही हूँ। तो वहां पे उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई जो एक मोहर्रम प्रोसेशन की थी। मोहर्रम प्रोसेशन में जो मॉर्नर्स होते हैं शिया प्रोसेशन में, तो उन्होंने बुरहान वानी का जो मिलिटेंट कमांडर है उनकी जो पोस्टर था वो कैरी करे हुए थे। तो उस पे उसके ऊपर उन्होंने मुझे बोला दैट आप ग्लोरीफाई कर रहे हो टेररिज्म को, आप बढ़ावा दे रहे हो टेररिज्म को, आप जो यूथ है कश्मीर में उनको इंड्यूस कर रहे हो थ्रू योर पिक्चर्स। सो मुझे लगता है कि कश्मीर में सहाफियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, हमारी जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर रहे हैं अथॉरिटीज। तो दुनिया में अभी दुनिया भर के जो हर किसी जगह पे दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है हर किसी मुल्क में वो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ जूझ रही है, COVID-19 है। तो लेकिन जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रही है, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं।
वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा और भी कई लोगों की मिसाल देते हैं।
आज की तारीख में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी हमें आपातकाल की याद दिला रहे हैं, मैं उनको कुछ पत्रकारों की याद दिलाना चाहूंगा। पवन जायसवाल, जिसने उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम के अंदर जो गड़बड़ झाला थी उसकी बात की थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, उसकी हालत मुश्किल कर दी गई। उसके बाद सिद्दीक कप्पन, केरल से करीब 3 पत्रकार आ रहे थे हाथरस में, जो कथित गैंगरेप और हत्या हुई थी उसे कवर करने, उनके खिलाफ देशद्रोह और UAPA जो धाराएं आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं उन पर लगा दी गई। यही नहीं, धवल पटेल, ये गुजरात के पत्रकार थे, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये कह दिया था कि गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं उनके काम से आलाकमान खुश नहीं है और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ सेडिशन का केस कर दिया गया। ढेरों मिसाल सामने है। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो तमाम पत्रकार आज की तारीख में अर्णब गोस्वामी के मामले में रो रहे हैं ना, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, मगर जैसे ही कन्हैया मंच पर आया था इन्होंने इस मामले को में बवाल मचा दिया। गौरी लंकेश के मरने पर किसी को अफसोस नहीं था, यही नहीं, अर्णब गोस्वामी को मैंने खुद कई बार अपने चैनल्स पर उदारवादियों के खिलाफ या जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते या बीजेपी के विरोध में हैं, उनके बारे में इसने मुझे याद एक कार्यक्रम में खुलकर बोल रहा था। तो बताओ दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? यानी कि एक लिंच मॉब क्रिएट करना, एक भीड़ पैदा करना। ऐसे पत्रकारों ने मेरे जैसे लोगों के खिलाफ एक भीड़ इकट्ठा की और हमें बार बार टारगेट किया गया।
कन्हैया कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस मामले पर अपने विचार रखे।
पहली बात तो ये कि ऐसा तब हुआ था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था और किसी पत्रकार के ऊपर अगर कुछ कहा जाता था तो पूरी की पूरी बिरादरी बोलती थी। उस वक्त पत्रकार समुदाय खेमेबाजी में नहीं बटा हुआ था। आज ये परिस्थिति बदल गई है। आज हर समुदाय, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, आप सेना के पूर्व अधिकारियों को देख लीजिए, आप जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, आप रिटायर्ड जजों को देख लीजिए, आप पत्रकारों को देख लीजिए, आप कलाकारों को देख लीजिए, आप बिजनेस कम्युनिटी को देख लीजिए। हर समुदाय जो है वो खेमों में बट गया है। क्यों बट गया है? जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ही ये खेमाबाजी क्रिएट कर रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछ जाते हैं, लेट जाते हैं, वो तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं उनको वो देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं।
अर्णव गोस्वामी और भारतीय मीडिया पर भारत के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार की कुछ बातें।
और अब तो ये भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं, और कहता खुद को चौथा खंभा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। ताकि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खींच जाए तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। आ रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। इन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंभा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है।
कानून और न्याय पर भरोसा उसी समय तक रहता है जब तक समानता के साथ न्याय हो और सबको न्याय मिले, और ये कोई बहुत जटिल बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है, अलबत्ता अगर इसे समझना चाहे कोई। अनुमति दे, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। टिकाऊ आर्थिक विकास।
दोस्तों, टिकाऊ आर्थिक विकास के कन्नीकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और गैम्ब्रिज विका। सलाम स्वीकार कीजिए।
मित्रों, कार्यक्रम में हम ईरान में उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा के साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों से आपको परिचित करवाएंगे। उद्योग हर देश की अर्थव्यवस्था की नींव होता है। उद्योग का ही हाथ पकड़कर देश विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं। उद्योग अर्थव्यवस्था के अन्य भागों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण होता है। उद्योग देश को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता देता है और रोजगार के अवसर पैदा कराता है। उद्योग और उत्पादन अगर निर्यात की सीमा तक पहुंच जाए तो फिर देश के विकास में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। खदान, कारखाने और ऊर्जा तथा निर्माण उद्योग के क्षेत्र के मुख्य भाग हैं। आज हम ईरान के उद्योग के इतिहास पर एक नज़र डाल रहे हैं।
उद्योग के बहुत से अर्थ बयान किए गए हैं और भांति भांति की परिभाषाएं बताई गई हैं। कुछ लोगों के विचार में उद्योग उन गतिविधियों का समूह है जिनकी मदद से और कच्चे माल, पूंजी, श्रम बल व तकनीक के प्रयोग से कोई चीज़ बनाई जाती हो जिसे इंसान की कोई ज़रूरत पूरी हो। कुछ लोग उद्योग की उपयोगिता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास के रूप में देखते हैं जिसमें कम चीज़ों के इस्तेमाल और अधिक उपयोगिता पर बल दिया जाता है।
आज ईरान में उद्योग का जो अर्थ है उसका आरंभ दुनिया में मशीनों के चलन के साथ ही हुआ। ईरान में बनने वाला सबसे पहला कारखाना रस्सी बनाने के लिए बनाया गया था। इस कारखाने में सन 1896 में काम आरंभ हुआ था। ये कारखाना तेहरान के निकट बनाया गया था। उस काल में ईरान में उद्योग आयातित उद्योग की ही सीमा तक था। उस समय उद्योग की देश के सकल उत्पाद में बहुत ही कम भूमिका थी। समय बीतने के साथ ही साथ देश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कानून बनाए गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से देश में बार बार पैदा होने वाले संकटों की वजह से ईरान में उद्योग बहुत आगे नहीं बढ़ सका। ईरान में सब उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी तो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया जिसकी वजह से ये प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई। सन 1941 के बाद देश में फिर से विकास कार्य आरंभ हुआ और धीरे धीरे उद्योग और खदान की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगी। मार्च सन 1950 में तेल के राष्ट्रीयकरण से ईरान में औद्योगिक विकास का नया चरण आरम्भ हुआ।
तेल उद्योग और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया। यहाँ तक कि एक दशक बाद अर्थात 60 के दशक में देश को औद्योगिक बनाने की दिशा में गंभीर रूप से प्रयास आरंभ हुए, लेकिन तेल से होने वाली आय में बहुत अधिक वृद्धि जैसे कई कारकों की वजह से देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया गलत रास्ते पर चल पड़ी, जिसकी वजह से ईरान में उद्योग की बुनियाद पड़ने के बावजूद सन 1979 में पहलवी शासन श्रृंखला के अंत तक ईरान को एक औद्योगिक देश का दर्जा नहीं मिल सका, बल्कि उसे विकास की राह पर चलने वाला देश तक भी नहीं समझा जाता था। उस समय ईरान की स्थिति के बारे में आज के ईरान के दुश्मनों की जबान से सच्चाई सुनना ज़्यादा अच्छा होगा। अमरीका की भूतपूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब हार्ड च्वाइसेस में लिखा है कि हमारी ये कोशिश थी कि ईरान में ऐसी सरकार आए जो तेल बेचे और सामानों का आयात करे।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद कुछ निर्भरता वाले उद्योग तक ही सीमित रहने का अभिशाप खत्म हुआ और ईरान ने उद्योग के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले तक देश में कुछ खास प्रकार के उद्योग विदेशी विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते थे, लेकिन ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से पेट्रोकेमिकल, उड्डयन, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार जैसे बहुत से क्षेत्रों में उद्योगों ने जन्म लिया और गति पकड़ी और ये सब कुछ ईरानी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद से संभव हुआ। देखते ही देखते ईरान ने इस प्रकार के कई क्षेत्रों में असाधारण रूप से सफलताएं अर्जित की। यहाँ तक कि सन 2017 में ईरान के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की भूमिका 40% तक पहुँच गई।
ईरान में औद्योगिक विकास के लिए जो काम किए गए उनमें लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए मदद करना है। लघु उद्योग लचकदार होता है और उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार करता है। बेहद कम समय में वैट के रूप में आमदनी का कारण होता है तथा रोजगार सृजन के साथ साथ निर्यात में भी भूमिका निभाता है। बहुत से देशों में लघु उद्योग रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करते हैं। फ्रांस के अध्ययनकर्ता टेरी कोविल का ख्याल है कि लघु उद्योग पूरी दुनिया में सबसे सफल क्षेत्र है। अतीत में बहुत से लोगों का यह विचार था कि अगर अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो लघु उद्योग खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है और लघु उद्योग फैल रहा है।
लघु उद्योग के लिए कर्मचारियों की संख्या, पूंजी की मात्रा, कुल पूंजी, व्यापार और बिक्री तथा उत्पादन वे मापदंड हैं जिन पर लघु उद्योग को परखा और नापा जाता है। लेकिन इस प्रकार के उद्योगों को सरकारी स्तर पर जो समर्थन मिलता है उसका उद्देश्य निर्धनता को दूर करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने और संतुलन बनाने में मदद देना होता है। लघु उद्योग रोजगार पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। ईरान में भी अन्य देशों की ही भांति लघु उद्योग का समर्थन और उसकी सहायता प्राथमिकता है और देश की विकास योजनाओं में उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ईरान में 90% से अधिक उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। आंकड़ों के अनुसार उद्योग में रोजगार का 48% भाग लघु उद्योग से ही संबंधित है। रिपोर्टों में बताया गया है कि 10 लाख से अधिक लोग 40,000 से अधिक यूनिटों में नौकरी करते हैं।
ईरान में लघु और मध्यम उद्योग का महत्व 80 के दशक में लघु उद्योग संस्था के औपचारिक गठन के साथ उजागर हुआ। उसके बाद सन 2000 तक विभिन्न औद्योगिक नगर बनाए गए, यहाँ तक कि जिस ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले मात्र 4 औद्योगिक क्षेत्र से आज ईरान में 960 औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ये औद्योगिक क्षेत्र पूरे ईरान में फैले हुए हैं। इसके विस्तार में सरकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस प्रकार से लघु उद्योग के सरकार की ओर से समर्थन मिलता है उसके दृष्टि निवेशक आसानी से इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, जो लघु उद्योग के विकास का कारण बनता है।
ईरान की लघु उद्योग संस्था क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से जन्म लेने वाली संभावनाओं से लाभ उठाने की योजना रखती है। इस दिशा में काम करते हुए ये संस्था ईरान में देशी व विदेशी निवेशकों के लिए उचित वातावरण और कानून बनाती है। इसके अलावा ये संस्था ईरान में औद्योगिक इकाइयों की श्रृंखला भी बनाती है जो किसी भी लघु उद्योग के लिए जरूरी होते हैं। ये संस्था एक ही स्थान पर एक उद्योग से संबंधित विभिन्न इकाइयों को बनाने में मदद करती है। कई संबंधित इकाइयों से लगभग 400 समूह ईरान में बनाए जा चुके हैं।
इस संदर्भ में एक सफल नमूने के रूप में मिट्टी और चीनी के बर्तनों की औद्योगिक श्रृंखला लालचिन का नाम लिया जा सकता है, जो हमदान में स्थित है। लालचिन की एक औद्योगिक श्रृंखला वास्तव में राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। ईरान में मिट्टी और चीनी के बर्तनों का केंद्र हमदान है। लालचिन में मिट्टी के बर्तनों का इतिहास 700 साल पुराना है और यही वजह है कि इस नगर को ईरान में मिट्टी के बर्तनों की राजधानी कहा जाता है। लालचिन में मिट्टी के बर्तन और टाइल्स बनाने के 700 से अधिक छोटे बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों में 500 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें 200 से अधिक दुकानों में बेचा जाता है। यहाँ पर हर साल 3,70,00,000 से अधिक कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। 15,000 की आबादी वाले लालचिन नगर में अधिकांश लोग इसी काम में व्यस्त हैं और उनके रोजगार का माध्यम भी यही है।
हमदान के लालचिन नगर में मिट्टी के बर्तन और टाइल्स बनाने के लिए जरूरी सभी यूनिटों को बनाया गया है। इस नगर में सजावटी टाइल्स, किचन और हमाम आदि में प्रयोग की जाने वाली टाइल्स बनाई जाती हैं। टाइल्स और बर्तनों के लिए जरूरी मिट्टी बनाने की यूनिट अलग से है। इसी प्रकार रंग आदि के लिए अलग कारखाने हैं और कारखानों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें भी यहीं पर बनती हैं। स्थानीय दुकानें हैं, निर्यात के लिए कार्यालय हैं, उत्पादकों का संघ है और सब कुछ एक ही स्थान पर मौजूद है।
इस नगर में तरह तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, प्रतिमाएं बनती हैं, रंग बिरंगी टाइलें, सादा टाइलें, टाइलों को चमड़े, लकड़ी, कपड़े आदि जैसी चीज़ों को मिलाकर भी बनाया जाता है। लालजिन को लगभग 2 दशक पहले ही निर्यात केंद्र भी बनाया गया, जहां से कई प्रकार के उत्पादों को दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति रूहानी का कहना है कि अधिक से अधिक दबाव का दौर अंतिम सांसें ले रहा है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 457 लोगों की मौत हो गई। सैयद हसन नसरुल्ला का कहना है कि दुश्मन की हर मूर्खता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। शिवसेना का कहना है कि तेजस्वी यादव एक जुझारू नेता बनकर उभरे हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारे पेज का एड्रेस है facebook.com/irib। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज़।